नमस्कार भारत, तारीख 30 मई दिन बुधवार, मैं हूँ मानसी दाश। डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात के लिए अमेरिका की तैयारियां शुरू।
यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यूज टू एक्टिवली प्रिपेयर फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप्स एक्सपेक्टेड समिट विद लीडर।
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से आज मुलाकात करेंगे पीएम मोदी, क्या कुछ हो सकती है चर्चा।
नौसेना के मामले में हो सकता है कि एक नया कुछ डेवलपमेंट सामने दिख कर के आए और वही इंडोनेशिया यात्रा का सबसे प्रमुख मकसद।
आज से शुरू होगी बैंक कर्मचारियों की हड़ताल, बढ़ सकती है लोगों की परेशानियां।
एटीएम में कैश होगा तो चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, इसलिए 20 दिन के पहले गवर्नमेंट को नोटिस दिया ना।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। रूस के सबसे चर्चित खोजी पत्रकारों में से एक अर्कादी बाबशेंको की यूक्रेन की राजधानी कीव में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 41 वर्षीय बाबशेंको की पत्नी ने गोली चलने की आवाज सुनी। जब वो घर के बाहर आई तो बाबशेंको खून में लथपथ मिले, बाद में उनकी मौत हो गई। बाबशेंको रूसी राष्ट्रपति पुतिन के प्रखर आलोचक थे। अपनी जान को खतरा बताते हुए उन्होंने बीते साल रूस छोड़ दिया था। कीव के पुलिस प्रमुख ने इसे निशाना बनाकर की गई हत्या बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री पावलो क्लिमकिन ने संयुक्त राष्ट्र में पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि वो जांच में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा,
Of course, it's about finding out.
जाहिर है इसके पीछे कौन है इसका पता लगाया जाएगा। अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन हमें यहाँ रूसी पैटर्न दिख रहा है। लेकिन इसकी पुष्टि के लिए यदि कोई वास्तविक मदद मिलती है और हम ये साबित कर पाते हैं और इसके पीछे लोगों का पता लगा पाते हैं तो ये सराहनीय होगा। हम इस दिशा में भरोसेमंद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद का स्वागत करते हैं। गजा पट्टी में फलस्तीनी लड़ाकों और इजरायली सैन्य बलों के बीच हुई ताजा हिंसा पर चर्चा करने के लिए अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है। अमेरिका का कहना है कि इजरायली नागरिकों को निशाना बनाकर की जा रही हिंसा के लिए फलस्तीनी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाए। इजरायली सेना का कहना है कि गजा की ओर से बीते दिन 70 से अधिक मोर्टार हमले किए गए हैं, जिनके जवाब में 55 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। हमास और इस्लामिक जिहाद ने इजरायली ठिकानों पर हमला करने की बात स्वीकार की है। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल ठोस जवाब देगा। उन्होंने कहा, इसराइल अपने और अपने समुदायों के ऊपर हमास और इस्लामिक जिहाद के हमलों को गंभीरता से लेता है। इजरायली सैन्य बल पूरी शक्ति से इन हमलों का जवाब देंगे। इसराइल हर उस व्यक्ति को भारी नुकसान पहुंचाएगा जो उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। हम अपने ऊपर हो रहे इन हमलों के लिए हमास को जिम्मेदार मानते हैं। बीते सप्ताह इसराइल और गजा की सीमा पर भारी हिंसा हुई थी। इसराइली सैन्य बलों की कार्रवाई में 100 से अधिक फलस्तीनी मारे गए थे और हजारों घायल हुए थे। मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने निकारागुआ की सरकार पर अर्धसैनिक गुटों के साथ मिलकर राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा के खिलाफ चल रहे छात्रों के प्रदर्शनों का दमन करने के आरोप लगाए हैं। संस्था का कहना है कि ये अर्धसैनिक समूह सरकार समर्थक छात्रों और बाइक सवारों के हैं जो अर्ध स्वचलित हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एमनेस्टी का कहना है कि ये समूह सरकारी बलों के समन्वय में हमले कर रहे हैं और उन्हें मौके से फरार होने दिया जा रहा है। अमरीकी टेलीविजन नेटवर्क ABC ने अपना कॉमेडी शो रोजेन रद्द कर दिया है। शो की स्टार रोजेन बर ने कई चर्चित लोगों के खिलाफ दुर्भावना से भरे ट्वीट किए थे। देर रात किए गए एक ट्वीट में उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के एक सलाहकार को मुस्लिम ब्रदरहुड और प्लैनेट ऑफ एप्स का बच्चा बताया था। हालांकि बाद में रोजेन बर ने सलाहकार वैलेरी जेरेट से माफी मांग ली, लेकिन ABC का कहना है कि उनका घृणास्पद बयान चैनल के मूल्यों के खिलाफ था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की समर्थक रोजेन बर ने हिलेरी क्लिंटन और उनकी बेटियों पर भी निशाना साधा था और अरबपति यहूदी निवेशक जॉर्ज सोरोस को नाजी कह दिया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने एक तरह के ब्रेन कैंसर का इलाज खोजने में कुछ हद तक कामयाबी हासिल कर ली है। ग्लायोब्लास्टोमा नाम की इस बीमारी के इलाज के लिए वैज्ञानिकों ने मरीज की ही प्रतिरक्षा प्रणाली से वैक्सीन बनाई। शुरुआती नतीजों के मुताबिक कुछ लोग इस नए इलाज के बाद स्थापित इलाज के मुकाबले दोगुना तक जिए। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ होने वाली बातचीत से पहले इनकार कर दिया था, लेकिन फिर बाद में उनका कहना था कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। अब व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया है कि ये बैठक सिंगापुर में ही होगी। अब से कुछ घंटों पहले व्हाइट हाउस ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच होने वाली बातचीत के लिए जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। मुलाकात के संबंध में बात करने के लिए किम जोंग उन के खास प्रतिनिधि और पूर्व खुफिया प्रमुख किम योंग चोल इस सप्ताह के आखिर में अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से मुलाकात करने वाले हैं। इसके साथ ही उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच मौजूद असैन्यकृत इलाके में अमरीकी और उत्तर कोरियाई प्रतिनिधियों की भी मुलाकातें होने वाली हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हीथर नुआट ने कहा,
The United States continues to actively prepare for President Trump's expected summit with leader Kim in Singapore. President
Trump. हीथर नुआट कह रही हैं कि किम जोंग उन के साथ सिंगापुर में होने वाली मुलाकात के लिए अमरीका तैयारियां कर रहा है। जून की 7 तारीख को ट्रंप व्हाइट हाउस में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से मुलाकात करने के लिए उत्तर कोरिया की सेंट्रल कमेटी के चेयरमैन किम योंग चोल भी न्यूयॉर्क आने वाले हैं। उम्मीद यही जताई जा रही है कि अमेरिका और उत्तर कोरिया की मुलाकात इसी साल जून में होगी। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर हैं और इससे जुड़ी सभी जानकारी बीबीसी आप तक पहुंचाता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीकी देश निकारागुआ में राष्ट्रपति के खिलाफ छात्र बीते एक महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं और इस कारण यहां राजनीतिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है। इन हिंसक प्रदर्शनों में अब तक करीब 80 लोग मारे जा चुके हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि सरकार इन प्रदर्शनकारियों का दमन करने के लिए सशस्त्र गुटों का इस्तेमाल कर रही है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए दिलनवाज पाशा से।
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने निकारागुआ की सरकार पर अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर छात्रों के प्रदर्शन का दमन करने के आरोप लगाए हैं। निकारागुआ में अप्रैल से सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं, जिनमें अभी तक करीब 80 लोगों की मौत हो चुकी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि हथियारबंद समूह सुरक्षा बलों के साथ मिलकर अर्ध स्वचलित हथियारों से हमले कर रहे हैं और उन्हें मौके से फरार होने दिया जा रहा है। एमनेस्टी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार समर्थक छात्रों और बाइक सवारों के सशस्त्र समूह प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आरोप लगाया है कि ये सब राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा की जानकारी में हो रहा है। राजधानी मनागुआ में एक प्रेस वार्ता में बोलते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल की एरिका गुएरा रोजास ने कहा, मैंने देखा कि किस तरह प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती हिरासत में लिया गया, AK-47 से पीटा गया और अज्ञात वाहनों में भर कर ले जाया गया और अब हम नहीं जानते कि वो कहाँ हैं। हमें बताया गया है कि कुछ बंधक हैं। हम राष्ट्रीय एजेंसियों से मांग करते हैं कि दमन बंद करें और अपने हथियार सौंप दें और नागरिकों के खिलाफ जो अपराध उन्होंने किए हैं उनके लिए न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दें। इसी प्रेस वार्ता में मानवाधिकार कैंपेनर बियांका जैगर ने कहा, वो उन्हें कुत्तों की तरह मार रहे हैं, उन पर मुकदमे चला रहे हैं और दंगारोधी पुलिस ऐसे हमले कर रही है जैसे युद्ध के लिए तैयार हो। निकारागुआ के लिए अब एक ही रास्ता बचा है कि राष्ट्रपति ओर्टेगा और उनकी पत्नी रोजारियो मुरिल्लो शांतिपूर्वक तरीके से चले जाएं, सत्ता छोड़ दें और देश में शांतिपूर्वक तरीके से स्वतंत्र चुनाव होने दें। निकारागुआ में हालात फिलहाल बेहद नाजुक बने हुए हैं। प्रदर्शनों में घायल हुए लोगों का इलाज करने वाले एक डॉक्टर ने बीबीसी को बताया है कि हालात युद्ध जैसे हैं। राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा ने बीते महीने पेंशन और सोशल सिक्योरिटी में कटौती की घोषणा की थी, जिसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किए थे। जल्द ही ये प्रदर्शन देशव्यापी सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गए और राष्ट्रपति ओर्टेगा को पद से हटाने की मांग उठने लगी। हालांकि राष्ट्रपति ने कटौती के प्रस्ताव वापस ले लिए, लेकिन इससे प्रदर्शन नहीं रुके। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने निकारागुआ की सरकार से अंतर्राष्ट्रीय आयोग को स्वतंत्र जांच करने की अनुमति देने की मांग की है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच के लिए एक आयोग का गठन कर दिया है।
माफ कीजिएगा, हमने अभी कहा कि निकारागुआ अफ्रीकी देश है, निकारागुआ असल में केंद्रीय अमरीकी देश है।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
अब रुक करते हैं भारत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर की 5 दिन की यात्रा के पहले पड़ाव यानी इंडोनेशिया पहुंच गए हैं। यहां आज वो राष्ट्रपति जोको विडोडो से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच किन अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और इस मुलाकात के लिए माफ कीजिएगा, इस मुलाकात से भारत को क्या हासिल होगा? हमारे सहयोगी आदर्श राठौर ने यही सवाल किया एशिया प्रशांत मामलों के जानकार और मलाया यूनिवर्सिटी के सीनियर लेक्चरर राहुल मिश्रा से।
बहुत सारे मुद्दे प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा में आएंगे, जो कि इंडोनेशियन जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, उनकी दिसंबर 2016 की यात्रा से जोड़ करके देखना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों में आर्थिक मुद्दे आएंगे, विज्ञान तकनीकी के मामले में एक दूसरे के सहयोग के मुद्दे आएंगे, आर्कियोलॉजिकल साइट्स और हेरिटेज इश्यूज और कल्चरल कोऑपरेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन इन सबसे ज़्यादा मुझे जो लगता है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है मैरिटाइम पार्टनरशिप। ये जो सैन्य सहयोग है एक दूसरे के साथ, और इंडियन ओशन रीजन में मलक्का स्ट्रेट्स में साउथ चाइना सी में जो इंडिया और इंडोनेशिया की जो नई एक तरह की साझा एक समझ जो बढ़ रही है वो मुझे लगता है इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो बहुत मुखर तौर पर इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर रहा है, जिसके सबसे बड़े समर्थक अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया हैं। तो इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में सबसे ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, वो एक मुद्दा बहुत मुझे लगता है कि मुखर तौर पर आने वाला है। दिसंबर 2016 में भी याद कीजिए, जब जोको विडोडो भारत आए थे तो भी एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दोनों देशों ने इशू किया, दोनों के विदेश मंत्रालयों ने इशू किया, और साथ में ही एक मैरिटाइम ज्वाइंट स्टेटमेंट भी आया था। मुझे लगता है कि यही सिग्नलिंग करने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी ने की थी जब ये बात जनता के सामने आई थी कि सबांग पोर्ट, पोर्ट ब्लेयर से सबांग पोर्ट जो अचे प्रोविंस में है इंडोनेशिया, वहाँ तक की यात्रा प्रधानमंत्री एक शिप पे करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सिग्नलिंग की कोशिश थी कि भारत और इंडोनेशिया एक दूसरे के पड़ोसी हैं और ये समुद्र है जो उन दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है, और यही है जो इन दोनों के कॉमन विदेश नीति, सामरिक नीति और एक ब्रॉड जो लॉन्ग टर्म विजन है उनको भी एक कहीं ना कहीं एक तरह से लिंक करता है।
भारत के प्रधानमंत्री की इस यात्रा से भारत और इंडोनेशिया दोनों को क्या लाभ होगा?
इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार के मामले में सबसे बड़ा पार्टनर है, उसके बारे में बहुत सारी बातें होंगी। प्रधानमंत्री ने जब 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट में ट्रांसफॉर्म करने की बात कही थी, तो उसमें एक बड़ा मुद्दा ये था कि आर्थिक सहयोग को बढ़ाया जाएगा $100 बिलियन और उससे भी कहीं ज़्यादा की बात की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आएंगी। इंडोनेशिया की ये प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है स्टेट विजिट के तौर पर, जाहिर सी बात है कि विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री खुद इसमें कोशिश करेंगे कि कुछ नया और कुछ बड़ा हासिल हो। कल्चरल कोऑपरेशन और विज्ञान तकनीकी और व्यापार के मामलों में हम प्रगति करते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत डेवलपमेंट्स नहीं हुए हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच में, लेकिन एक कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हासिल करने की कोशिश मुझे लगता है प्रधानमंत्री की होगी, और उसमें मुझे लगता है कि मैरिटाइम कोऑपरेशन, नौसेना के मामले में हो सकता है कि एक नया कुछ डेवलपमेंट सामने दिख करके आए, और वही इंडोनेशिया यात्रा का सबसे प्रमुख मकसद है।
अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के कैराना, जहां लोकसभा सीट के लिए सोमवार को हुए मतदान में गड़बड़ी के बाद कुछ जगहों पर आज फिर से वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने 73 केंद्रों पर फिर से मतदान कराने की अनुमति दे दी है। विपक्षी दलों के साथ साथ बीजेपी ने भी कई जगह ईवीएम मशीनों में खराबी की आयोग से शिकायत की थी। पूरी जानकारी के साथ समीरात्मज मिश्र।
ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में खराबी के आरोपों के बीच उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट के 73 बूथों पर आज दोबारा मतदान होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि बुधवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। सोमवार को कई जगह ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया।
वीवीपैट के मेल फंक्शन के शिकायत आए थे, उनके आधार पर हमारे जो जनरल ऑब्जर्वर इन क्षेत्रों में गए थे उनके रिपोर्ट के आधार पर और रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट के आधार पर कमीशन ने यह तय किया है कि कैराना में 73 पोलिंग स्टेशंस पर फ्रेश पोल होगा सेक्शन 58 के अनुसार।
प्रशासन ने कैराना उपचुनाव में वीवीपैट खराब होने की वजह से इन सीटों पर दोबारा मतदान का प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा था। आज जिन पोलिंग बूथों पर दोबारा मतदान होंगे उनमें नकुड़ की 23, गंगोह की 45, थाना भवन की 1 और शामली के 4 पोलिंग बूथ शामिल हैं। कैराना लोकसभा में सहारनपुर की दो और शामली जिले की 3 विधानसभाएं आती हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वरलू ने बताया था कि वोटिंग के दौरान करीब 384 स्थानों पर वीवीपैट मशीनें खराब होने की शिकायतें मिली थीं, जिन्हें बदलकर सुचारू रूप से वोटिंग कराई गई थी। हालांकि सोमवार को मतदान देर रात तक कराए गए थे, लेकिन विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया था और आयोग को इतनी शिकायतें मिली थीं कि गड़बड़ी वाली जगहों पर दोबारा मतदान का आदेश देना पड़ा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को भी ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ के आरोप लगाए और आने वाले चुनाव में बैलेट पेपर के इस्तेमाल की मांग की।
ये जो संदेह पैदा हो रहा है, मशीनों में भरोसा नहीं रहा समाजवादी पार्टी ने, और मैंने पहले से भी कहा, शुरुआती दौर से कहा कि मशीनों पर भरोसा नहीं है, आम लोगों का भी भरोसा टूटा है मशीनों पर। जिस तरीके से लगातार एक मशीन फिर दो मशीनें, हर जगह से जो शिकायतें आना शुरू हुई कि बड़े पैमाने पर मशीनें खराब थीं, मैं समझता हूं मशीनों से मतदान होना, ईवीएम से मतदान होना, ये लोकतंत्र को खतरा पैदा कर रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है, हमारा मानना है कि आने वाले समय में जो भी चुनाव हो वो बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए।
ईवीएम और वीवीपैट में खराबी की शिकायतों के बाद विपक्ष ने इसे बीजेपी की साजिश बताया था। कैराना से आरएलडी उम्मीदवार तबस्सुम हसन ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने भी वीवीपैट में खराबी की बात तो स्वीकार की है, लेकिन ईवीएम में खराबी की बात से इनकार किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने टीवी चैनल एनडीटीवी से बातचीत में वीवीपैट खराब होने की ये वजह बताई।
मशीन बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें कई इश्यूज हैं। पहला इशू तो ये है कि न्यूली मैन्युफैक्चर्ड है। हमारे पास पहले सिर्फ 20,000 मशीन होती थी वीवीपैट, बाद में ये सब ऑर्डर की गई लास्ट ईयर और उसके बाद ये सप्लाई होना शुरू हुई। पोलिंग पार्टीज को भी पिछले 20 साल का अनुभव है ईवीएम यूज करने का, तो ईवीएम में फेलियर रेट जो है बहुत कम है, लेकिन वीवीपैट का उनका कोई अनुभव नहीं है।
सोमवार को यूपी की कैराना लोकसभा और नूरपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव कराए गए थे। उपचुनाव के नतीजे 31 मई को आएंगे। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
आज से 2 दिन तक देश भर में बैंक बंद रहेंगे। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर बैंक कर्मचारियों के संगठनों ने 2 दिन के हड़ताल पर जाने की अपील की है। इस देशव्यापी हड़ताल में सभी नेशनलाइज्ड बैंक, प्राइवेट सेक्टर के बैंक और कुछ विदेशी बैंकों के करीब 10,00,000 कर्मचारी शामिल होंगे। बीबीसी संवाददाता कमलेश मठेनी ने ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव CH वेंकटचलम से को फोन किया और उनसे पूछा कि बैंक कर्मचारियों की मांगें क्या है।
हमारा वेज रिविजन डिमांड के ऊपर 1 साल से वो अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो गया। वो मई 5 तारीख को IBO हमको बुलाया, वो मीटिंग में बोला हम 2% तनख्वाह बढ़ने के लिए हम अग्री करेंगे। ठीक नहीं है ना 2%। लास्ट सेटलमेंट में हमको 15% दिया, उसका पहले 17% दिया, आज बोलता है 2% दे देंगे। कारण क्या है? इन्होंने बैंक का प्रॉफिट कम हो गया है, लॉस ज्यादा है। वास्तव में बैंक का प्रॉफिट बढ़ता है, साल से साल बढ़ता है, लेकिन नॉन परफॉर्मिंग लोन्स है, बैड लोन्स है, उनका प्रोविजन के लिए प्रॉफिट पूरा जाता है। फॉर एग्जांपल 16, 17, 18 पूरा बैंक का प्रॉफिट राइट ऑफ के लिए, प्रोविजन के लिए गया, उसके बाद प्रॉफिट नहीं है। लेकिन उनको किसका जिम्मेदारी है? एम्प्लॉयज का जिम्मेदारी नहीं है, वो मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है। वो बोल के इधर हम वेज रिविजन नहीं दे देंगे, ये सब बोलेंगे तो कैसा अग्री कर सकता है? वो है लड़ाई।
आप कितना परसेंट चाहते हैं?
नहीं नहीं, हम कितना परसेंट नहीं बोल सकता है, हमको रीजनेबल एडिक्वेट वेज रिविजन, महंगाई के बारे देखना है, हमारा वर्कलोड देखना है, सर्विस कंडीशन देखना है, इम्प्रूवमेंट करना है, उसके बाद बोलेंगे। अभी तक हमने परसेंटेज नहीं बोल दिया, हमारा डिमांड दिया, डिमांड देख के बोल दो, डिमांड वो देख के 2% बोला, हम रिजेक्ट किया, ऊपर आना है, ऐसा बोल दिया।
कितने बैंक एम्प्लॉयज है जो स्ट्राइक पर होंगे?
10,00,000 बैंक एम्प्लॉयज, कर्मचारी, ऑफिसर्स, पूरा लोग, गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक है, फॉरेन बैंक, पूरा लोग जाएगा, मैनेजर भी जाएगा, पूरा बैंक बंद होगा।
क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था, अल्टरनेट कुछ है जो लोगों को, ताकि दिक्कत ना हो?
अल्टरनेट बैंकिंग में तो ATM होगा इधर उधर, मालूम नहीं कितना ATM काम करेगा, मालूम नहीं। ATM में कैश होगा तो वो चलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए 20 दिन के पहले गवर्नमेंट को नोटिस दिया ना, लोगों को सर्विस देने का किसका जिम्मेदारी है? बैंक का जिम्मेदारी, गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है ना। ये गवर्नमेंट को बोल दिया, 20 दिन के पहले नोटिस दिया, वो कुछ नहीं कर दिया। मीटिंग होगा चीफ लेबर कमीशन के सामने, उधर भी मैनेजमेंट अग्री नहीं किया, गवर्नमेंट अग्री नहीं किया, हम क्या करेगा? राइट, हड़ताल है तो पब्लिक को प्रॉब्लम आएगा, इसलिए पहले हम नोटिस दिया, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं किया ना।
आपकी जो मीटिंग होती है उसमें भी अगर कुछ नहीं हुआ या आपके पक्ष में कुछ नहीं आया तो
उधर भी बोला थोड़ा आगे आइए, हम भी बात करेंगे, हड़ताल हम छोड़ेंगे, लेकिन कुछ नहीं एग्री किया।
तो अगर आपके पक्ष में कुछ नहीं आता है तो क्या 31 के बाद भी कोई स्ट्राइक हो सकती है?
मीटिंग रखेंगे, लीडर्स को मीटिंग रखे, क्या करेगा।
और कार्यक्रम में आगे बढ़ें इससे पहले जानते हैं कि आज दिल्ली से छपने वाले अखबारों में क्या खास छपा है। अखबारों के साथ दिलनवाज पाशा स्टूडियो पहुंच गए हैं। बताएं दिलनवाज, क्या है आज की बड़ी खबरें?
मानसी, कल CBSE ने 10वीं के नतीजे जारी किए, टॉपर्स की तस्वीरें आज अखबारों में छपी है, लेकिन अफसोसनाक खबर भी बगल में है। दिल्ली में 2 छात्रों ने कम नंबर आने पर आत्महत्या कर ली, ये खबर भी अखबारों में है, सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने RSS के मुख्यालय जाने का न्योता स्वीकार किया है, इससे राजनीतिक खलबली मची हुई है और यही आज का द टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है। अखबार बता रहे हैं कि किस तरीके से इसे लेकर के राजनीति हो रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है कि प्रणब मुखर्जी ने संकेत दिया है कि RSS अछूत नहीं है। आज का इंडियन एक्सप्रेस बता रहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम को लागू करने पर राजी हो गए हैं।
जी, यही संघर्ष विराम जो 2003 में हुआ था।
और जम्मू कश्मीर से जुड़ी ये खबर, हुर्रियत संगठन ने जम्मू कश्मीर के जो अलगाववादी संगठन हैं उन्होंने कहा है वो बातचीत तो करेंगे केंद्र सरकार से, लेकिन एजेंडा स्पष्ट हो। केंद्र सरकार ने बातचीत का प्रस्ताव जो है अलगाववादी संगठनों को दिया है। दिल्ली सरकार ने 5 बड़े अस्पतालों पर 600 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और ये जुर्माना लगाया गया है गरीबों का इलाज न करने के लिए। इनमें एक अस्पताल पर तो 503 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कुछ कल ही जो है दिल्ली सरकार ने अपनी स्वास्थ्य नीति लागू की थी और अस्पतालों पर फायदा वो कितना कमा सकते हैं उसको सीमित कर दिया। और अब चलते चलते एक खबर शिमला की, जहां पानी को लेकर इतनी किल्लत हो गई है कि पुलिस का पहरा लगाना पड़ रहा है और लोगों को एक टैंकर पानी के लिए 5,000 रुपये तक चुकाने पड़ रहे हैं।
जी, धन्यवाद दिलनवाज। जैसा कि अभी दिलनवाज ने बताया, शिमला जो कभी अंग्रेजों की राजधानी हुआ करती थी वो इन दिनों गंभीर जल संकट से जूझ रही है। कुछ जगहों पर हालात ऐसे हो गए हैं कि पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा। होटलों को पर्यटकों की बुकिंग तक कैंसिल करनी पड़ रही है। ऐसा पहली बार हुआ जब नगर निगम और राज्य सरकार इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। आखिर ये हालात पैदा क्यों हुए, सुनिए आदर्श राठौर की ये रिपोर्ट।
ब्रितानी सरकार की गर्मियों की राजधानी रहे शिमला में वैसे तो हर साल गर्मियों के मौसम में पानी की किल्लत हो जाती है, लेकिन इस बार हालात बेहद खराब हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब स्थानीय जनता पानी के लिए हाहाकार कर रही है और नौबत लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर एक हफ्ते से भी ज्यादा समय से पानी की आपूर्ति नहीं हुई, यानी लोगों के पास पीने तक के लिए साफ पानी नहीं है। पानी न होने के कारण कई होटलों को एडवांस में की गई बुकिंग को कैंसिल करके पैसे लौटाने पड़ रहे हैं। शिमला में 50 साल से भी ज्यादा समय से होटल चला रहे गोपाल मोहन अग्रवाल बताते हैं कि उन्होंने पहले कभी ऐसे हालात नहीं देखे।
73 ईयर से मैं यहाँ रह रहा हूँ, 73 साल मेरी उम्र है और मेरा बस प्लेस भी शिमला है। यहाँ रहने ऐसा सिचुएशन कभी नहीं देखी। जैसे कोई इमरजेंसी आती है, नीचे कोई तूफान आ जाता है, कुछ आता है, वो वाली मुश्किल आ गई है इसमें। एक्चुअली जब लोग यहाँ पहुँचते हैं तो फिर कहते हैं हमारे पानी नहीं, हम आपको मिनरल वाटर लेना पड़ेगा। तो वो फिर वो मैंने सोचा हमारा 50 साल पुराना होटल है, उससे रेपुटेशन खराब हो रही थी। तो हमने सोचा कि हम लोगों को ये बताएं कि भाई आप अपनी बुकिंग कैंसिल करना चाहते हैं, आपको फुल रिफंड मिल जाएगा और आप शिमला ना आए। शिमला में पानी पोजीशन कोई सुधरने वाली नहीं है।
शिमला शहर में पानी की व्यवस्था का जिम्मा नगर निगम के पास है, जिसके मेयर और डेप्यूटी मेयर BJP के हैं। मगर मेयर कुसुम सदरेट किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए चीन गई हैं, जिससे लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। BBC ने डेप्यूटी मेयर राकेश कुमार शर्मा से बात की और पूछा कि ऐसे हालात कैसे पैदा हो गए। उन्होंने इस जल संकट के लिए पिछले मेयर और पिछली राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया।
नगर निगम में इन्हीं लोगों का कब्जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का रहा हो, चाहे वो 5 साल जो है CPIM का रहा हो। तो उसकी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो कमी है, कईयों को इन्होंने डायरेक्ट पाइपलाइन से कनेक्शन दिए हैं, उसकी वजह से पानी के डिस्ट्रीब्यूशन में और प्रेशर में कमी आ जाती है। लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पाता है और हमारे को इनकी की भी कमियों का खमियाजा आज भुगतना पड़ रहा है।
नगर निगम के हाथ से चीजें निकलने के बाद हाल ही में राज्य में सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने हालात को संभालने की कोशिश तो की, मगर अब तक जमीन में सुधार देखने को नहीं मिल रहा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, कई तरह के फॉर्मूले भी निकाले गए हैं, लेकिन जनता को राहत मिलती नहीं दिख रही। इस मामले को लेकर विपक्षी कांग्रेस ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा,
यहाँ त्राही त्राही मची हुई है, मेयर जो है चाइना गई हुई है, और जब इतनी स्थिति खराब है तो जो हालात हैं, कम से कम ऐसी स्थिति तो कभी नहीं हुई पिछले सालों में। आप देखेंगे इसी साल में ऐसी स्थिति नहीं हुई पानी को देखें। गवर्नमेंट ने खुद ही मान लिया कि हम फेल हो गए इस फ्रंट पे।
जैसे ही पानी की किल्लत शुरू हुई, टैंकरों से पानी सप्लाई करने वालों ने मनमाने दाम वसूलना शुरू कर दिया, मगर जो पानी वो दे रहे हैं वो कितना साफ है उस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। साल 2015 में शहर में गंदे पानी की सप्लाई से पीलिया फैल गया था, जिससे 2 दर्जन से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अब सरकार ने शहर को 3 हिस्सों में बांटकर बारी बारी से एक एक दिन पानी सप्लाई करने की योजना बनाई है। जब बीबीसी ने हिमाचल प्रदेश के आईपीएच विभाग के सचिव देवेश कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि बर्फबारी कम होने के कारण ऐसे हालात पैदा हुए हैं।
इस बार बर्फ भी पड़ी और बर्फ न पड़ने से सोर्स रिचार्ज नहीं हुए हैं। इवन जो रिवर्स हैं इनका डिस्चार्ज बहुत ड्रास्टिकली डाउन हो गया है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। और वो जो रिवर्स है उन्हीं से सोर्सेज से पानी उठाया जाता था, तो अगर सोर्सेज में ही पानी नहीं बचा तो उसके उपरांत फिर जो है समस्या बढ़ ही गई। 2-3 MLD पानी इरिगेशन नीड्स हमने जो रेस्ट्रिक्ट करी है तो उनसे फर्क पड़ना चाहिए। और बाकी अब थोड़ा बारिश की संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि अगले 10 दिन में थोड़ी बारिश होगी, तो उससे भी हम उम्मीद कर रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पानी की किल्लत का संज्ञान लेते हुए सख्त आदेश दिए हैं कि पानी की सप्लाई जोन्स के हिसाब से ही की जाए, न कि VVIP एरिया के हिसाब से। इसके साथ ही शहर में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। सबकी उम्मीदें बारिश पर तो टिकी हुई हैं, लेकिन सवाल उठता है कि इस तरह से मौसम पर कब तक निर्भर रहा जाएगा। जानकार मानते हैं कि शिमला में पानी की आपूर्ति बहुत हद तक उसी सिस्टम के जरिए होती है जिसे अंग्रेजों ने स्थापित किया था, जबकि शहर पर साल दर साल आबादी का दबाव बढ़ता जा रहा है। आदर्श राठौर, BBC दिल्ली।
और कार्यक्रम के आखिर में अब सुनते हैं खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने जा रही अफगानिस्तान टीम ने अपने पहले टेस्ट के लिए टीम में 4 स्पिन गेंदबाजों को जगह दी है। ये टेस्ट मैच 14 से 18 जून के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम में मुजीबुर रहमान, आमिर हमजा, राशिद खान और जहीर खान जैसे स्पिनरों को जगह मिली है। मुजीब और राशिद IPL में खेल कर आए हैं। टीम की कमान असगर स्टानिक जाई को मिली है, जो टेस्ट से पहले बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली 3 T20 मैचों की सीरीज में भी टीम की कमान संभालेंगे। और वहीं चोटिल भारतीय कप्तान विराट कोहली फिलहाल सरे काउंटी टीम के लिए खेलते नहीं दिखाई देंगे। ऐसे में क्रिकेट प्रशंसक उनकी टीम में वापसी का इंतजार कर रहे हैं। विराट पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार अयाज मेमन।
वो आजकल है बैंगलोर में नेशनल क्रिकेट अकेडमी में रिहैबिलिटेशन में गए हुए हैं। फिटनेस टेस्ट देने वाले हैं 15 जून को, यानी अफगानिस्तान के खिलाफ भी नहीं खेल सकते क्योंकि टेस्ट मैच अफगानिस्तान के खिलाफ 14 को शुरू हो रहा है। अब देखना यह है कि लिमिटेड ओवर टूर्नामेंट यानी कि T20 और ODI मैचेस जो इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ है वो उसमें शामिल हो गए या नहीं, या अपने आप को बचा के रखेंगे टेस्ट मैचेस के लिए।
खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
कार्यक्रम में आपसे विदा लें उससे पहले मुख्य समाचार सुनते हैं एक बार फिर दिलनवाज पाशा से।
रूस के सबसे चर्चित खोजी पत्रकारों में से एक अरकादी बाबशेंको की यूक्रेन की राजधानी कीव में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वे राष्ट्रपति पुतिन के प्रखर आलोचक थे। गजा पट्टी में फलस्तीनी लड़ाकों और इजरायली सैन्य बलों के बीच हुई ताजा हिंसा पर चर्चा करने के लिए अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है। मानवाधिकार समूह एमनेस्टी इंटरनेशनल ने निकारागुआ की सरकार पर अर्धसैनिक गुटों के साथ मिलकर राष्ट्रपति डेनियल ओर्टोगो के खिलाफ चल रहे छात्रों के प्रदर्शनों का दमन करने के आरोप लगाए हैं। अमरीकी टेलीविजन नेटवर्क ABC ने अपना कॉमेडी शो रोजेन रद्द कर दिया है। शो के स्टार रोजेन बर ने कई चर्चित लोगों के खिलाफ दुर्भावना से भरे हुए ट्वीट किए थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने एक तरह के ब्रेन कैंसर का इलाज खोजने में कुछ हद तक कामयाबी हासिल कर ली है। यूरोपीय संसद ने एक नया कानून पारित किया है जिसके तहत किसी अन्य यूरोपीय देश में अस्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारी को उतना ही वेतन दिया जाएगा जितना वहां कार्यरत स्थानीय कर्मचारियों को दिया जा रहा है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन किया देवाशीष ने और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचाया अनंत अवस्थी ने। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे दिन भर में। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए bbchindi.com से। फिलहाल सभी साथियों समेत मानसी दास को दीजिए अनुमति। नमस्कार।